ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्या नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके। शील प्रभुपाद की ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो आज बहुत पवित्र और शुभ दिन है, वामन द्वादशी है और श्री प्रादजीव गोस्वामी का भी आविर्भाव तिथि है। तो हम संक्षेप में इस श्लोक श्रीमद् भागवतम का जो क्रम चल रहा है उसका संक्षेप में पाठ करके थोड़ा वामन देव के आविर्भाव के विषय में बोले, थोड़ा सा जी गोस्वामी के बारे में। आज सबके लिए फिष्ट प्रसादम भी है, श्रीपाद भक्ति चारु स्वामी महाराज के व्यास पूजा के उपलक्ष्य में आज सभी वैष्णवों के लिए भंडारा। सबके लिए है ना, सबके लिए है या सबके लिए भंडारा है? तो श्लोक संख्या है 44 और 45। 44 में अनुवाद नहीं है, अनुवाद है तात्पर्य नहीं है, तो इसको ही पढ़ लेते हैं। किमु व्यवहिता अपत्य दारा आगार्धना दय राजकोष गजा अमात्य भृत्याप्ता ममतास्पदा। अनुवाद, चूंकि शरीर को अंततः मल या मिट्टी में बदल जाना है, अतः इस शरीर से संबंधित साज सामान यथा पत्नियां, घर, धन, बच्चे, रिश्तेदार, नौकर चाकर, मित्र, राज्य, खजाने, पशु तथा मंत्रियों से क्या प्रयोजन। ये सभी नश्वर हैं, इनके विषय में इससे अधिक क्या कहा जा सकता है। कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कर रहे हैं। 45 किम बोलिए, किम ये तई आत्मना तुक्षई सह देहेन नश्वरई अनर्थई अर्थ संकाशई नित्य आनंद रस उदधे। ये विच्छेद है, प्रपाद ने विच्छेद किया है, सत हो जाएगा शब्दार्थ। किम क्या लाभ ये तई इन सबों से, आत्मनः अपने को, तुक्षई जो प्रायः नगण्य हैं, सह साथ देहेन शरीर के, नश्वरई नाशवान अनर्थई अनिच्छित अर्थ संकाशई। ऐसा प्रतीत होता है मानो आवश्यक हो। नित्यानंद नित्य सुख के, रस अमृत के, उदधे समुद्र के लिए। अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की, ये सारे साज समान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर है, किंतु जैं ही यह शरीर नष्ट हो जाता है तें ही शरीर से संबंध ये सारी वस्तुएं भी समाप्त हो जाती हैं। अतएव वास्तव में किसी को इनसे कुछ लेना देना नहीं रहता, किंतु वह ज्ञान वश ही इन्हें मूल्यवान समझ बैठता है। शाश्वत सुख के सागर की तुलना में ये सारी वस्तुएं अत्यंत नगण्य हैं। शाश्वत जीवन के लिए ऐसे नगण्य संबंधों से क्या लाभ है? तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति शाश्वत आनंद का सागर है। इस शाश्वत आनंद की तुलना में समाज के तथा कथित सुख, मित्रता तथा प्रेम व्यर्थ तथा नगण्य हैं। अतएव मनुष्य को अस्थाई वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। ले प्रभुपाद जी तात्पर्य में बहुत महत्वपूर्ण चीज लिखते हैं। प्रहलाद महाराज अपने जीवन का अपना इतिहास वर्णन करते हुए कि किस तरह से नारद जी उनके माँ कयाधु को जब इंद्र मारने के लिए ले जा रहे थे तो नारद जी अकारण कृपा करके आए और इंद्र से उनकी माँ की रक्षा किए और अत्यंत करुणा से, प्रेम से पूरी होकर उनके माँ को अपने आश्रम में ही रहने का आश्रय प्रदान किया और स्वयं उसका निरीक्षण करते थे। स्वयं नारद जी के निरीक्षण में कयाधु जो है आश्रम में रही तब तक जब तक कि उसके पति मंदराचल पर्वत से तपस्या करके वापस न आ जाएं। और बहुत करुणा करके उन्होंने उपदेश दिया उनके माँ को और प्रहलाद को भी। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि माँ कम ज्ञान के चलते या भौतिक देह में या स्वजनों में आसक्ति के चलते उस ज्ञान को धारण नहीं कर पाई, भूल गई, लेकिन मैं उसको याद रखा। जो भी नारद जी ने कयाधु को उपदेश प्रदान किया था माँ के द्वारा, प्रहलाद महाराज भी उस ज्ञान को धारण किए। बच्चा माँ के गर्भ में माँ से हर चीज सीखता है, गर्भ में ही माँ जो खाती है माँ के थ्रू बच्चे को भी मिलता है। माँ की चेष्टाएं, माँ का संस्कार, माँ का चिंतन मनन उस बच्चे पर पड़ता है। इसलिए गर्भाधान संस्कार से ही बच्चे में गुणों की, गुण दोष की आवृत्ति होने लगती है उसमें। माँ से ही बच्चा हर चीज सीखता है, भाषा भी जन्म लेता है तो माँ से ही सीखता है। इसीलिए हम लोग मातृभाषा, तो आपकी मातृभाषा क्या है जो हम माँ से सीखे? माँ के गर्भ में थे तो भी सीखे, खाए पिए भी माँ के नाल से ही, माँ के नाल से बच्चे का नाल युक्त होता है। अब माँ जो भी भोजन करती उस भोजन का रस नाल के थ्रू, नाभि नाल से बच्चे को मिलता है और उसके द्वारा हर चीज भी, उसी वैसा संस्कार भी, वैसा हाव भाव भी, जो माँ जैसा सोचती है वो बच्चे में वैसे संस्कार बनते हैं। अब बच्चा जब जन्म लेता है तो भी माँ के सानिध्य में रहता है, पिता के सानिध्य में हम लोग कम रहे हैं, ज्यादा माँ के सानिध्य में रहे हैं। बचपन माँ के गर्भ में और गोद में बीता है, इसलिए माँ का ज्यादा स्नेह है, ज्यादा ऋण है। मातृ देवो भव। पिता, लोग बोलते हैं पिता को पिता हो सकेंगे, माता को माता नहीं हो सकती है। माँ अपने संकट में रह करके भी बच्चे को सुखी जीवन के लिए प्रयास करती है, अपने ठंड में भी रहकर बच्चे को ठंड से बचाती है, अपने आंचल में अपने गोद में उसको चिपकाए रहती है, अपने मजदूरी करके भी बच्चे को पढ़ने के लिए भेजती है कि नहीं। आज जन्म लेने के बाद उसको खिलाना, उसका मल मूत्र साफ करना, उसके हर जरूरत को पूर्ति करना, गोद में भी मल मूत्र कर देता है उसको सफाई करना, रात में जग जग कर उसकी देखभाल करना, माँ का बहुत स्नेह है। और अंत में माँ सिखाती है, उंगली पकड़ कर चलना सिखाती है। माँ प्रथम गुरु है, एक अक्षर भी जो बता देता है गुरु है, एक अक्षर शिष्य बराबर, जो गुरु देत बताए। तो माँ प्रथम गुरु है, जो हमें भाषा सिखाती है और चलना सिखाती है, लेकिन मदन मोहन जी हम लोग माँ से सीखे हैं ज्यादा, इसलिए भाषा पढ़ लो। आपकी मातृभाषा क्या है? जो माँ से सीखे, चाहे अंग्रेजी वाली माँ हो चाहे भोजपुरी की, गोद में ही बच्चा सीख जाता है। और व्याकरण नहीं पढ़ाती है माँ कि व्याकरण पढ़ो तो अंग्रेजी बोलने लगोगे, या हिंदी का व्याकरण पहले पढ़ाऊंगी तब भाषा बोलोगे, नहीं, माँ के साथ बोलते बोलते सीख जाता है। भाषा बोलने से आती है, व्याकरण पढ़ने से तो बूढ़ा हो जाएंगे तो भी नहीं आएगी। बहुत लोग संस्कृत का व्याकरण पढ़ते हैं, अंग्रेजी का व्याकरण पढ़ते हैं कि हम अंग्रेजी बोलेंगे, उसमें बहुत समय लग जाएंगे। अब वासु घोष प्रभु 3 महीने में संस्कृत बोलने लगे, तो मैं पूछा कैसे बोलना सीखे, तो एक संस्कृत बोलने वाला एक टीचर रखे, उसके साथ बोलते थे, बोलते बोलते जल्दी आता है। हारमोनिया भी ग्रामेटिकल सीखेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, ऐसे बजाते बजाते जल्दी आ जाता है, ऐसे बजाते रहिए। और ग्रामर में सीखेंगे, ग्रामेटिकल जाएंगे उसका सूत्र में तो बहुत समय लगता है। तो माँ से हम बहुत कुछ सीखे हैं, और प्रहलाद महाराज माँ से, माँ के थ्रू ही भगवत भक्ति को नारद जी के द्वारा प्राप्त किए, माँ माध्यम थी। से ध्रुव महाराज के लिए माँ ही माध्यम बनी। माताओं का ज्यादा भक्ति में सहयोग है। आज कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, माताओं की संख्या ज्यादा रहती है, दान देने में भी। कल एक प्रोग्राम में गए थे, यहाँ जो मुंबई से यात्री आए हैं, मुंबई से भक्त लोग आए हैं, तो हम माताएं ही ज्यादा दान दे रही थी। मैं कहा कि आप लोग अपने लिए रखो बचा करके यात्रा में माना करने पर भी वो लोग दे रही थी। और पुरुष लोग एक एका दो को ही दिया है, तो ज्यादा माताएं माताओं का ज्यादा ये है। कोई भी कार्य में, यहाँ प्रभुपाद जी को भी फूल से सजाना, ये करना, झाड़ू लगाना, कुकिंग करना, कोई भी त्योहार में, घरों में भी माताएं ज्यादा भाग लेती हैं। हम लोग के घर में भी त्योहार होता है तो माताएं ज्यादा कार्य करती हैं। पुरुष लोग ठंडी में कमल होके बैठे रहेंगे, ठंडी लगती, माताएं सुबह ही पोतना, बर्तन धोना, आग लगाना, फिर चावल चुनना, दाल चुनना, सब, चाहे ठंडी हो या गर्मी, जो माताओं का जो कार्य है 24 आवर्स चालू रहता है। किचन बंद हो जाएगा तो आप उपवास कर जाएंगे। आप कभी होलीडे पर जा सकते हैं, आज काम पर नहीं जाएंगे। अब माताएं होलीडे पर चली जाएंगी तो खाना बंद हो जाएगा। माताओं का जो कार्य है वो 24 आवर्स है घर में। आप कोई उत्सव है तो दिन रात जगी रहती हैं। अगर अपने हस्बैंड से कहेंगी ओवर टाइम बनाकर सैलरी दे दो तो नानी मर जाएगी। और माताएं कहेंगे कि घर में जितना काम की हूँ उसका ओवर टाइम बना करके दे दो तो सारा सैलरी भी जाएगा तो भी नहीं होगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि माताएं घर में केवल बैठी ही रहती हैं, क्या करती हैं। हम देखे हैं, हमारे पिताजी जब घर खेती से काम करके आते थे बोलते आप लोग दिन भर बैठी रहती हो, कुछ करते नहीं, घर में सब बैठी रहती है, घर में बहुत काम है। तो कयाधु ने बहुत तप किया और अपने पुत्र प्रहलाद के जीवन के लिए, सुखमय जीवन के लिए, भक्तिमय जीवन के लिए, तो नारद जी के आश्रम में रह करके भगवत भक्ति का ज्ञान प्राप्त किया, और साथ में प्रहलाद महाराज को भी वो ज्ञान प्राप्त हुआ। और उसने संकल्प लिया कि अपने बच्चे के रक्षा के लिए, प्रहलाद के रक्षा के लिए, वो वहाँ आश्रम में रहे जब तक उसके पति आ न जाए। ले लगभग 100 वर्ष तक रखी रहा। कहाँ गए पंडित जी? आपको आगे बोला था, पीछे भाग गए। 100 वर्ष तक रखे ना प्रहलाद महाराज। प्रहलाद महाराज के लगभग 100 वर्ष, बोलो हाँ या नहीं। पंडित जी हैं, उनको बोला था कि यहाँ रहना, जब मैं भूलूंगा तो आप बताना। तो लगभग सुखदेव गोस्वामी तो 16 वर्ष है, कहीं 12 वर्ष है, लेकिन ध्रुव प्रहलाद महाराज सबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। लगभग 100 वर्ष तक गर्भ में ही रहे। कयाधु ने कहा कि जन्म नहीं दूंगी, अभी तो मेरे ऊपर ही संकट आया था, नारद जी की कृपा से बच गई। अगर बच्चे को पहले जन्म दे दूंगी तो कोई भी मार देगा कि असुर का पुत्र है, इसलिए जब पति घर में आ जाएंगे तभी जन्म दूंगी। कितना भारी तप किया उसने, किसके लिए? अपने पुत्र प्रहलाद के लिए। एक कविता हम पढ़े थे कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध है, माताओं के अस्था में साथ दूध रहता है, किसी के बच्चे को देखकर बात्सल्यमयी हो जाती है, दया आ जाती है, गोद में दूध पिलाने लगती है और आंख में पानी आ जाता है, किसी को दुख को देखकर तुरंत द्रवित हो जाती है। माताओं में करुणा ज्यादा है, तो अपने पुत्र के लिए कयाधु ने इस तरह से 100 वर्ष वानप्रस्थ जीवन व्यतीत की, वनचारी बनकर रही आश्रम में। यहां पर श्रील प्रभुपाद जी प्रहलाद महाराज अपने जीवन के कुछ अनुभव को सुना रहे हैं असुर बालकों से, कि हम क्यों व्यर्थ के चीजों के लिए प्रयास करते हैं। जो नश्वर है, जो शरीर के साथ ही समाप्त हो जाता है, जितने भी साज सामान हैं, राजकोष है, बंगला है, हाथी है, घोड़ा है, खजाना है, ये शरीर से संबंधित संबंधी हैं, ये धन जौवन पुत्र परिजन इते की आछे परति तीरे, इनका क्या भरोसा है? ये जवानी है, इसका क्या भरोसा है कि रहेगी हमेशा? ये जवानी कब तक साथ देगी? कोई भरोसा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये धन भी कब तक है? कभी कभी करोड़पति भी खाकपति हो जाते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहने वाले भी रोडपति हो जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं। ये धन का भी क्या भरोसा है? ये जवानी भी कब तक रहेगी? हम जवानी पर बहुत इतराते हैं, बार बार कंघी से आईना से देखते रहते हैं, एसनो लगाते हैं, एस बाद में नो। एक भक्त कहा कि एसनो मतलब लगा लिए तो हाँ बहुत अच्छा, बाद में धूप आ गई तो पानी जैसा हो गया, तो नो हो गया, एस नो, यहाँ एस नो है, थोड़ा ठीक है बाद में नहीं। थोड़ा समय हम खुश रहते हैं फिर रोते हैं, कभी हंसते हैं कभी दुखी हो जाते हैं, ये क्षण क्षण बदल रहा है। कभी हम बहुत अच्छा अनुभव करते हैं, कभी बहुत उदास हो जाते हैं, कभी बहुत सुखद संवाद आता है, कभी बहुत दुखी समाचार मिलता है, कभी मान मिलता है, कभी बहुत अपमान मिलता है, कभी बहुत खाने को मिलता है, कभी नहीं मिलता है, कभी घन घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मन। हमारे यहाँ लोग बोलते हैं कि कभी बहुत खाने को मिलता है आ कभी मुट्ठी भर चना भी नहीं मिलता है, कभी बहुत सम्मान मिलता है आ कभी जूते चप्पल से भी स्वागत होता है। महाराज कहते हैं कभी लोग जिंदाबाद बोलते हैं, कभी वही आदमी मुर्दाबाद बोलता है, हटो राशन दो नहीं तो आसन दो, महाराज बोलते। ये संसार का नियम है द्वंद्व, दोनों साथ में रहता है, सब दिन जात ने एक समाना, याद रखना चाहिए। कोई जरूरी ना कि हम हमेशा बड़े पद पर ही रहेंगे, हमारी हमेशा पूजा ही होगी, ये दिन ये हमेशा ही ऐसा रहेगा, नहीं, कभी दुर्दिन भी आएंगे, कभी खराब दिन भी आएंगे, इसलिए अच्छे समय में हमें ज्यादा इतराना नहीं है और खरा गलत समय में दुख में हमें घबराना नहीं है, उसको भी सहन करना है। ये दिन जो है द्वंद्व युक्त है, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, दोनों साथ है, जन्म है तो मृत्यु भी है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि शरीर के साथ जितने भी चीजें, जितनी भी वस्तुएं हैं, चाहे डिग्री हो, चाहे पद हो, चाहे सौंदर्य हो, सब चला चला जाता है, चलम चित्तम चलम वित्तम चलम जीवन जौवनम, सब चलायमान है। संस्कृति जो हमेशा हमसे दूर सरक कर भाग रहा है, हम पकड़ना चाहते हैं लेकिन सरक कर भाग जाता है, वो सरकते रहता है। संस्कृति इति संसारम, जो स्थिति में हमेशा बदलाव आता है, परिवर्तनशील संसार में सबको जन्म के बाद बूढ़ा होना है, मरना है, ऐसा नहीं कि हम हमेशा जवान ही रहेंगे। एक कवि ने कहा कि हमारे सामने हमारी जवानी चली गई, मैं देखते रह गया, कब किधर से भाग गई पता नहीं चला, ये जवनिया हमार हमारे जिंदगिया में पार हो गई। तो गाना गाते हैं हमारे यहाँ, हम तो सोचली कि हुए ईशो ना, हम तो सोचे बहुत कीमती है, बहुत बहुमूल्य है, लेकिन भंगार का भी दाम नहीं दिया। हम तो सोचली कि हुए ईशो ना, लेकिन लोहा के दाम मिल गई, ई जवनिया हमार हमारे जिंदगिया में पार हो गई, पार हो जाएगी, शरीर चली जाती है। अरे ये तो क्या है, लोग बोलते हैं कि खैर कोई बात नहीं, जो भी हो बच्चे नहीं शादेंगे तो स्त्री तो है, घर में बूढ़िया है वो तो साथ देगी। अरे कोई नहीं साथ देगा तो हम बूढ़े बूढ़ी घर में रह जाएंगे, क्या भरोसा है। जब ये नारी ही साथ नहीं देती है तो नारी क्या साथ देगी, साथ देगी। डॉक्टर बोलते हैं नाड़ी बंद हो गई है, लोग नाड़ी देखते हैं, नाड़ी बंद हुई, जब नाड़ी ही साथ नहीं दे तो नारी क्या साथ देगी, कोई साथ देने वाला नहीं है। हम अकेले आए हैं, अकेले जाएंगे। हमारे यहाँ भोजपुरी में गाना लोग गाते हैं कि जाए के अकेल बा और झमेल कौन काम के, क्यों इतना झमेला पाल कर रखे हो, जाना तो अकेले है। जीव अपने कर्म का पाप पुण्य का अकेले भोग करता है, इसमें दूसरा कोई बांट नहीं सकता है। ऐसा नहीं कि हम थोड़े अपने पाप कर्म को बच्चों में बांट देंगे, स्त्री में बांट देंगे, संबंधियों नहीं, हमें अकेले ही उसको भोग करना है। प्रहलाद महाराज असुर बालकों से कहते हैं, क्यों चिंता करते हो, शरीर मिला है तो उसके अनुसार सुख दुख वैसे ही आ जाता है। जैसे हम बीमारी के लिए कोई दवाई नहीं लेते हैं, कोई टॉनिक नहीं लेते हैं, यानी कोई कहता है कि डॉक्टर साहब हमें बुखार होना अच्छा लगता है, बुखार दे दीजिए, मैं बीमार होना चाहता हूँ कोई दवाई दे दीजिए, कोई बीमार नहीं होना चाहता लेकिन बीमारी आ जाती है। वैसे ही जीवन के शरीर के देह जोनी के अनुसार जितना मिलना है उतना मिलेगा ही, इसके लिए व्यर्थ क्यों चिंता करते हैं, अधिक क्यों उसके लिए प्रयास करते हैं। हम अपने बहुमूल्य आयु को व्यर्थ और दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करने के लिए लगा देते हैं, खो देते हैं। जो नहीं प्राप्त होने वाला है अदुर्लभ, उसके लिए भी जो मिलना है जितना मिलना हो तो मिलेगा। जैसे दुख बिना प्रयत्न किए मिल जाते, यथा दुखम अजत्नतः। प्रहलाद महाराज कहते हैं हे असुर बालकों, कैसे दैवा देह जोगे न देही नाम, प्रलयन कैसे है पंडित जी, देह जोगे न सुखम आत्यंतिकम दैवा, देखा सही में पंडित जी हैं। सुखम आत्यंतिकम दैवा देह जोगे न देही नाम, सर्वत लभते दैवात यथा दुखम अजत्नतः। अजत्नतः हम जत्न नहीं करते हैं दुख के लिए, कोई दुख के लिए प्रयास करता है, हर आदमी सुख के लिए प्रयास करता है, धन कमाना, घर बनाना, शादी करना, नौकरी। मुंबई में आगे बोलते कि पहले नौकरी खोजो फिर झोपड़ी फिर छोकड़ी, अरे क्या है, नौकरी नहीं मिलेगी तो नहीं आगे काम नहीं बढ़ेगा क्या। आ नहीं, पहले प्रोजी अपने पैर पर होते, अभी किसके पैर पर हो, लोग बोलते हैं पहले अपने पैर पर हो जाए थे, अभी क्या दूसरे के पैर पर हैं क्या, हम तो अपने पर ही हैं, अपने पर ही रहना है, दूसरे के ऊपर कोई नहीं रहता है, अपने पैर पर हो जाएंगे तब ये करेंगे। तो क्या बोल रहा था, तो हम प्रयत्न करते हैं सुख के लिए लेकिन दुख आ जाता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि जिसको जो भी शरीर मिला उस शरीर के अनुसार सुविधा असुविधा दोनों मिलता है, क्या चिंता करते हो असुर बालकों, चिंता मत करो। और जो मिला भी है वो चला भी जाने वाला है, शाश्वत नहीं है, जो भी है हमारे पास वो भी जाने वाला है, इसलिए उसमें ज्यादा रच पच कर नहीं रहना है, ज्यादा उसमें आसक्ति नहीं पालना है, यही समझना है कि हम यहाँ के मालिक नहीं, लोग बोलते हम मेहमान हैं, हम घर के मालिक नहीं हैं, हम क्या हैं, अब मेहमान हैं। जो कुछ मिला है थोड़ा समय के लिए हमको भगवान ने धरोहर रूप में दे दिया है, कि इतना सब थोड़ा संभालो। जैसे हम लोग बाथरूम जाते हैं तब बेड पे बोलते हैं प्रभु जी बेड पे रखिए मैं आता हूँ। अब बाथरूम गए बेड बैग हमें दे दिए, अपना पर्स दे दिए, मोबाइल दे दिए, नहीं कि वो हमारा है। उसी तरह भगवान कुछ वस्तुएं हमें दिए हैं संभालने के लिए, टेक केयर करने के लिए। लोग बोतल पर लिख दें, क्या लिखते हैं, बहुत सारे लोग आजकल लिख रहे हैं बोतल पर, आई सी ओ है केयर ऑफ लिखते हैं, सी ओ सी ब्रैकेट वैसे ही ना लिखते हैं, केयर ऑफ माने आपको केवल संभालना है, आप चौकीदार हैं। भगवान ने इस जगत का आपको चौकीदार बनाया है, लेकिन हर आदमी बोलते हैं हम मालिक हैं, हम मालिक हैं। क्या मालिक हैं, क्या लेकर आए थे महाराज? परम पूजरा राघवन महाराज को बोलते हैं कि आप क्या लेकर आए थे कि आप मालिक हैं, एक अंडरवियर भी लेकर आए थे हैं, इतना गुमान क्यों है, काहे गुमान कैले बा? जब आपको अंडरवियर पर भी अधिकार नहीं है, अंडरवियर भी दूसरे का ही बनाया हुआ है, दूसरे का ही है, तो हमारा क्या गुमान है? लोग बहुत धन पर गुमान करते हैं कि मेरे पास बहुत धन है, मैं ये हूँ वो हूँ, लेकिन सब जो कुछ भी है ये सारे साज समान तभी तक अत्यंत निकटस्थ एवं प्रिय लगते हैं जब तक यह शरीर है। किंतु जैं ही यह शरीर नष्ट हो जाता है तैं ही शरीर से संबंधित सारी वस्तुएं समाप्त हो जाती हैं। ये धन जौवन पुर आत्मा आत्मज आप्त गृह बीत जने सुशक्त दुष्प्रापणाय गुणसंग विवर्जिताय मुक्तात्म भी सुहृदय परिभाविताय। गजेंद्र कह रहे हैं ज्ञानात्मने भगवते नमीश्वर। आत्म अपने शरीर में और पुत्र पौत्र में, आत्मज आत्म आत्मज आप्त संबंधियों में, गृह घर में, बीत धन में, जने सुशक्त कुटुंबियों में, अपने अनुयायियों में लोग आसक्त रहते हैं। ये आसक्ति बेकार है, जिसको हम पकड़ कर रखना चाहते हैं वही हमें छोड़कर चला जाता है। हम कितना भी जबरदस्ती पकड़ कर रखें वो समय आने पर छोड़कर चला जाता है। जैसे जाल में मछली और जल दोनों रहता है, लेकिन जल मछली को छोड़कर चला जाता है, और मछली जल से इतना आसक्त रहती है कि जल के बिना मर जाती है तड़प तड़प कर। जल से इतनी आसक्ति है मछली की, जाल परे जलजात बही तजी मिनन को मोह, आ रहिमन मछली नीर को तव न छाड़त छो। मछली व्यर्थ ही जल से इतनी आसक्ति पाल रखी है, जाल में फंस गई जल भी, लेकिन जल तो निकल जाता है और मछली जल के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। वैसे हम कोई हमारे स्वजन मर जाते हैं, हमारा धन चला गया तो लोगों का हार्ट अटैक हो जाता है। बड़े बड़े उद्योगपतियों मान लीजिए रातों रात शेयर में करोड़ों रुपया नुकसान हो गया तो हार्ट अटैक हो जाता है। या कोई अपना संबंधी, अपना स्वजन या अपना प्रिय पुत्र मर गया तो लोग मर जाते हैं, उसको सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, सहन नहीं कर पाते हैं। तो हमें यह सोचना है कि सब जाने वाले हैं, हम ट्रेन में बैठे हैं, सबका आरक्षण है, सबका गंतव्य अलग अलग है। जैसे हम मुंबई में अंधेरी बैठे तो कोई मलाड उतरता है, कोई गोरेगांव, कोई जोगेश्वरी, कोई दहीसर, कोई मीरा रोड, अलग अलग सबको जा। परिवार रूपी कोच में हम बैठे हैं, परिवार ट्रेन का एक कोच है, एसी कोच हो चाहे स्लीपर हो चाहे जनरल कोच हो, सब एक साथ चल रहे हैं, लेकिन सब का गंतव्य अलग अलग है, सबका डेस्टिनेशन अलग अलग है, अलग अलग जाएंगे, इसलिए उसमें क्या आसक्ति पालना है। महाराज कहते हैं कि लोग बोलते हैं हमारी सीट है, आप क्यों बैठ गए, हटिए, सीट किसकी है, हम तो थोड़े समय के लिए रिजर्व किया गया है, सीट तो रेल विभाग की है। यहाँ बोलते हैं सीट हमारी है, आप क्यों बैठ, हटिए हटिए। एक बार हम और राधारमण महाराज आ रहे थे बिहार से कालिका मेल में, जनरल बोगी में, दिन भर का सफर था तो जनरल बोगी में एक आदमी सोया था, बड़ी भीड़ थी, मोटा आदमी था, और वहाँ खड़ा भी नहीं होने दे रहा था, आगे बढ़िए। तो राधारमण महाराज कहे कि जनरल बोगी इतनी भीड़, आप सोए उठ बैठो, तो हाथा पाई होने लगा। मैं थोड़ा दूर था, जोर से डांटा वहीं से फिर डर गया और बैठाने लगा, फिर भाई अच्छे प्रीत करने लगा, फिर बिन भाई हो ही न प्रीत, पहले खड़ा भी नहीं होने दे रहा था। कभी कभी हम लोग का रिजर्वेशन नहीं होता है तो ट्रेन में यात्री लोग खड़ा भी नहीं, यहाँ क्यों खड़े, आगे बढ़िए हटिए। अरे भाई खड़े होने में तुमको क्या परेशानी है, क्या पूरी ट्रेन खरीद लिए हो, सीट थी ठीक है रिजर्व है तुम्हारी, हम लोग का रिजर्वेशन तो हम लोग तो बैठा लेते हैं, क्या ये बैठे बैठ जाए। वो लोग सोचते हैं पता नहीं साधु है कि ढोंगी है कि क्या है, लुटेरा है कि कैसे, आजकल शंका भी रहता है ना कि जहर खुराने वाला है। तो हर चीज जो है, हम परिवार रूपी कोच में बैठे हैं, उतरना अलग अलग है। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं कि उसमें उतना आसक्ति मत पालो, एक दिन सबको जाना है, अलग अलग सबका गंतव्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमें आते मनुष्य को, प्रभुपाद जी अब कंक्लूड कर रहे हैं, इसका समरी दे रहे हैं, आते मनुष्य को अस्थाई, अस्थाई नहीं अस्थाई वस्तुओं के लिए आसक्त नहीं होना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण भावना अमृत स्वीकार करके सदा के लिए सुखी बन जाए। जिन वस्तुओं से हम सुखी बनना चाहते हैं उसे हम सुखी नहीं हो सकते हैं। तातल सैकत बारी बिंदु सम सुतमित रमनी समाजे, घर में परिवार में मित्र में संबंधियों से हम सोचते हम सुखी हो जाएंगे, जैसे तप्त बालू में प्रदेश में आप जा रहे हैं, प्यास लगी है एक बिंदु पानी हो, इस संसार मृग मारीचिका की तरह है, दिखाई देता है कि पानी है लेकिन पानी नहीं है, दिखाई देता है कि अब सुखी हो जाएंगे लेकिन वो दूर भागते रहता है। मृग मारीचिका में क्या होता है, दिखाई देता है कि अब आगे ही पानी मिलेगी लेकिन वास्तव में है नहीं। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें हम सुखी नहीं हो सकते हैं। सुखी होने के लिए अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तभी वो सुखी हो सकता है। संसार के किसी भी उपाय से, किसी भी साधन से, किसी भी वस्तु से, कितना भी आप विवेक लगा लीजिए, कितना भी वैज्ञानिक आविष्कार कर लीजिए, आजकल वैज्ञानिक लोग आविष्कार कर रहे हैं कि हम बुढ़ापा को रोक देंगे, मृत्यु को रोक देंगे, ऐसे वैज्ञानिक लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं कि हम लोग ऐसा आविष्कार कर रहे हैं दवाई कि लोग मरेंगे नहीं, ऐसा थोड़े हो सक नहीं हो सकता है। आविष्कार करने से पहले वही मर जाते हैं, अधूरा रह जाता है आविष्कार हो गया उनका। तो बामन देव का जो आविर्भाव प्राकट्य तिथि है, भगवान बामन देव माता जीती के गर्भ से उपेंद्र इंद्र के छोटे भाई के रूप में आए। पूर्व काल में पिष्णी सुतपा के रूप में 12,000 वर्ष तप किए थे दंपति, पिष्णी सुतपा पिष्णी गर्भ के रूप में भगवान आए। उनके तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान कहे कि आपको क्या वर्ष क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, क्यों इतना भारी तप किए 12,000 वर्ष शीत धूप बर्फ में रख कठोर तप किए थे। तो कि मैं आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। भगवान भाई इतना भारी तप किए किस क्या चाहिए आपको, आपके जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान कहे कि मेरे जैसा तो कोई है नहीं, मैं ही हूं, मेरे जैसा मैं ही हूं, भगवान के जैसा कोई उपमा नहीं है और कोई नहीं हो सकता है। क्या सिंगार वही वर्ण राजा, वहीं के सिंगार वहीं पे छा जा, उनके सिंगार का, उनके तुलना का, उनके शक्ल का, उनके हाव भाव का कोई मिलेगा नहीं। बोले मेरा जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता है, चलिए मैं ही आपका पुत्र बनकर आ जाऊंगा। तो भगवान पिष्णी गर्भ के रूप में और फिर दूसरे टर्म में उपेंद्र के रूप में बामन देव। बामन क्यों बने, कि माँ दीति ने भारी तप करके कहा था कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग का राज चाहिए, स्वर्ग पर बलि महाराज का साम्राज्य स्थापित हो गया था और सारे दीति अदिति के पुत्र जो है जंगल में गुफा में इधर उधर छुप गए थे, अपना जान बचाने के लिए इधर उधर छुप गए थे, मधुकरी मांगकर खाते पीते थे जो भी हो हमारे पुत्रों को राज्य चाहिए। तो भगवान के भाई भक्त से कैसे लड़ाई तो नहीं कर सकते हैं। महाराज कहते हैं कि भगवान सोचे कि ये भक्त, वो भी भक्त है, ये भी भक्त है, बड़ा असमंजस में है, किसको खुश करूं किसको नाराज करूं। होता है ना कि भी दोनों भक्त ही हैं और दोनों का मांग एक ही है, दोनों एक ही चिंग मांग रहे हैं, एक पहले से बैठा है तो उसको हटाना कैसे चाहिए। तो भगवान के भीख मांगते हैं, चलो अब भीख मांगने के लिए छोटा बनना चाहिए। अब मधुकरी करने जाएंगे, पूरा सिल्क का धोती कुर्ता, अब महंगा घड़ी पहन कर जाएंगे मधुकरी के, तो लोग बोलेंगे इतना महंगा पहने, बड़ा पर्स में रुपया भरे हैं, तो मधुकरी मांगने भी संकोच होगा और देने वाला बोलेंगे इतना लग्जरियस ड्रेस पहना है और मधुकरी मांग रहा है। आजकल फैशन हो गया है, लोग पैसा रखे हैं खूब महंगा मधुकरी मांगते। मधुकरी किसके लिए है? मधुकरी करिए और मौज मस्ती करिए, इसके लिए नहीं है। जो बहुत विरक्त हैं, जिनके पास लोटा थाली गिलास भी नहीं है, गमछा में रोटी मांग लेते हैं नमक खा लेते हैं, विरक्त है। जो एकदम भजन प्रेमी है, दिन रात भजन करते हैं, उनको फुर्सत नहीं है, उनके पास न बनाने के लिए कोई स्थान है, वैसे लोगों के लिए है। मांग कर रोटी खाई और मौज मस्ती करे तो ब्रजवासी लोग कहते हैं कि ब्रजवासी के टुकड़े नौ नौ हाथ के दांत है, अब भजन किए तो उभरे नहीं तो फाड़े हाथ। ब्रजवासी के टुकड़े मांग कर खाएंगे, वो बहुत परिश्रम से पसीना बहा करके खेती करते हैं, और मांग कर मौज मस्ती करेंगे खा करके, भजन करेंगे तब उभरेंगे, नहीं तो फाड़े हाथ, ब्रजवासी लोग कहते हैं। ब्रजवासी का खाए तो उससे ज्यादा भजन करिए, उनको दान दीजिए, तो अपना पैसा सेविंग में रखिए और उनका मांग कर खाइए, ये नहीं चलेगा। उसने हमारा पैसा थोड़ा बचत हो जाएगा, मांग कर खा लेंगे, देने के लिए आना चाहिए ना ब्रज में, ब्रज में दान करना चाहिए कि नहीं। हम ब्रजमंडल परिक्रमा देखिए, एक घर में तो सब लोग उसी घर में छुप जाएंगे। राधारण महाराज का कि अनाउंस करिए कि एक घर में दो आदमी एक आदमी जाए, जिस घर में रोटी पकते लाइन लग जाते थे, उसका सारा रोटी खेती में ले जाना उधर ले सब हो जाता, तो दिमाग लगाना चाहिए। तो भगवान को भी मांगना हुआ इसलिए छोटा बनकर आए, याचकता हूं को गए बावन अंगुर गात। भगवान को भी मांगना हुआ तब बावन अंगुर बावन हो गए, बावन का बावन अंगुल गात। मर्सिडीज कार में जाएंगे मधुकरी करने के लिए, BMW कार में। बेलगांव हम गए थे तो एक भक्त अपने घर में आमंत्रित किए थे, क्या नाम था प्रभु जी का, BMW कार लेकर आए थे। तो हम थे राधा श्याम सुंदर प्रभु, तो हम फ्रंट सीट में बैठे, पीछे तो आगे लिखा था BMW सीट में। तो मैं कहा प्रभु जी BMW है? तो हाँ प्रभु जी। मैं कहा मुझे तो साधारण ही लग रहा था। हाँ प्रभु जी BMW रखा हूँ ये भक्तों के लिए, महाराज लोगों के लिए सुना, मैं तो बाइक में घूमता हूँ। फिर नीचे लिखे थे बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा, ऐसा लिखे है ना वो। BMW का मीनिंग किए थे बी से बॉडी, एम से माइंड और डब्ल्यू से वेल्थ, बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो मैं कहा कि आप ही वास्तव में BMW हैं, यू आर रियली ए BMW, बिकॉज यू आर यूटिलाइजिंग एवरीथिंग, योर वेल्थ हेल्थ सब कुछ भगवान के सेवा में लें, तो आप BMW में, बॉडी माइंड वेल्थ इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। तो लाइन करंट कट गया, कहां से लिंक कर रहा था। हाँ छोटा बन कर गए, BMW में जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, छोटा बनकर जाना चाहिए। भीख मांगने के लिए भेख बनाना पड़ता है। देखिए भीख मांगने वाले क्या करते हैं, मकर संक्रांति के मेले कांट परसो जाते हैं कांटा के ऊपर, या शरीर में ऐसा घाव बना लेंगे वो बनावटी लगेगा कि हो गया है, या हड्डी फ्रैक्चर कर लेंगे नकली रूप से, भेख बनाएंगे तभी ना लोग देंगे, या अपने को जमीन में से गाड़ लेते हैं। हम लोग मकर संक्रांति के मेले में देखते थे कांटा है उस पर सो जाते, तो लोग देते हैं उसको पैसा। तो भीख मांगना है तो ऐसा भेख बनाओ, तो भगवान को भी ऐसा भेष बनाना पड़ा, छोटा बनना। इसीलिए मांगना बहुत बुरा काम है, मांगना नहीं चाहिए, मांगने वाला आदमी हमेशा छोटा रहता है, हाथ भी नीचे रहता है, देने वाले के ऊपर रहता है। इवे की लोग त्रिलोकी को भी, लक्ष्मी पति को भी मांगना हुआ तो छोटा बनना पड़ा है, इसलिए मांगना नहीं चाहिए। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज मुंबई में थे तो बिरार में प्रोग्राम चल रहा था, तो महाराज गेस्ट हाउस में गए, सत्यनारायण उद्धव हरि मिलने के लिए महाराज से गए। तब मिल कर आए तो मैं कहा कि महाराज क्या बोले कुछ, मैं सोचा महाराज जरूर कुछ बोले होंगे, कुछ उपदेश दिए होंगे। तो मैं कहा कि महाराज क्या बोले, तो बोले महाराज कहे सत्यनारायण जी कैसे आना हुआ, तो बोले कि असीम कृष्ण प्रभु का बिरार में कथा है, कथा चल रही है। तो महाराज चुप हो गए, फिर बोले कि संतोष रखना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए, आ कोई दे तो मना नहीं करना चाहिए। तो मैं कहा कि महाराज बहुत अच्छा चीज बोले, इसी को आप लोग इस सूत्र को हमेशा याद रखो कि संतोष होना चाहिए, मांगना नहीं चाहिए किसी से, कि इतना दक्षिणा देंगे, इतना पैसा देंगे तो हम आएंगे कीर्तन। बहुत लोग पहले से सट्टा लिखा लेते हैं कि इतना पैसा देंगे तो हम आ सकते हैं, तो नहीं आएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो महाराज के मांगना नहीं चाहिए, और सामने वाला दे रहा है स्वेच्छा से तो मना नहीं करना चाहिए, ले लेना चाहिए। तो मैं कहा कि ये सूत्र महाराज ने बहुत अच्छा दिया है तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को डिमांड नहीं करना चाहिए कि इतना हमको मिलेगा, हर रोज 1000 मिलेगा। तो भगवान भी देखिए मांगना है तो कितना उनका अस्तित्व एकदम ये हो गया। आ गए यज्ञ मंडप में, तो गए तो बहुत तेज, भले छोटा बालक लेकिन भगवान है ना, तो उनके मुखमंडल से तेज निकल रहा था, बहुत तेजस्वी ब्राह्मण। बलि महाराज देखकर बहुत प्रभावित हो गए, बोले कि हमारे ऐसे जग मंडप में ऐसे योग्य ब्राह्मण पधारे तो उनको दान देना चाहिए, पात्र को दान देना चाहिए, योग्य ब्राह्मण को, योग्य भक्त को दान पात्र में डाला जाता है, मंदिर में पात्र है, डोनेशन बॉक्स, कचड़े बॉक्स में डाल देंगे तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, इसलिए पात्र में डालते हैं। लिखा रहता है दान पेटी में दान दीजिए, तो भक्त लोग भी योग्य भक्त ब्राह्मण और दान पेटी हैं, उनमें डालेंगे तो भगवान तक पहुंच जाता है। गाय के द्वारा वैष्णवों को दिया हुआ, अग्नि के मुख में आहुति दिया हुआ भगवान को मिलता है। भक्त जो है एटीएम कार्ड है, ऑल टाइम मनी या ट्रांसफर मनी है, एटीएम है ना, ऑल टाइम मनी। एक भक्त हमारे कृष्ण भजन तो बोला कि हमारा एटीएम झोली माला है, ऑल टाइम महामंत्र, हम लोग ऑल टाइम महामंत्र जपते हैं ना, तो माला झोली क्या है, ये हम लोग का यही एटीएम है, ऑल टाइम महामंत्र बता रहा था कर क्या नाम है कृष्ण भजन। तो भक्त को भक्ति जो है ऑनलाइन मनी ट्रांसफर है, भक्त को योग्य पात्र को दिए तुरंत भगवान को ट्रांसफर हो जाता है। बलि महाराज देखे कि हमारे यज्ञ में ऐसे योग्य ब्राह्मण का पदार्पण हुआ तो इनको देना चाहिए, दान पात्र को देना चाहिए, अच्छे व्यक्ति को। वृथा दानम समर्थेषु वृथा दीपो दिवापिच, नीति शास्त्र में लिखा कि वृथा वृष्टि समुद्रेषु, समुद्र में वर्षा व्यर्थ है, खेती में हो तब ना काम आएगा, वहां तो ऐसे ही पानी है। वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच, दिन में दीपक जलाना व्यर्थ है। से पात्र को देखिए, पात्र स्वयं तेजस्वी ब्राह्मण के रूप में बालक है, तो दान देना चाहिए। बोले कि मांगो, आपको कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या देंगे आप, 3 पग भूमि दे दीजिए। समय समाप्त तो हो गया 2 पग में ही, अब 3रा पग बाद में हम कहेंगे, 9 बज गया है। जी गोस्वामी के बारे में भी बोलना था लेकिन समय, तो भगवान ट्रिक से कहे कि बलि महाराज कहे कि क्या 3 पग की बात कर रहे हो, कोई साम्राज्य मांग लो, कोई 1-2 कंट्री दे देता हूँ, अमेरिका है, इंडिया है, चाइना है, ये सब क्या मांग रहे हो, बालिश मती है तुम्हारी, चाइल्डिश हो आप, तुमको मांगने भी नहीं आता है, मैं राजा हूँ, त्रिलोकी हूँ, ब्राह्मण के बालक को मांगने भी नहीं आता है, अरे इतना मांग लो कि तुम्हारी 7 पीढ़ी भी दूसरे के हाथ न पसारने जाए। भगवान कहे मैं संतोषी ब्राह्मण, इतिहास पुराण पढ़ा हूँ, बड़े बड़े राजाओं का इतिहास पढ़ा हूँ, ज्यादा होने से संतोष नहीं होता है, अति संग्रह न कर्तव्य, मुझे 3 पग ही चाहिए। बोले चलो असुरों से नपवा देता हूँ, असुरों का बड़ा बड़ा पैर है, कई किलोमीटर में माप देंगे। बोले नहीं नहीं मैं इन्हीं पैरों से नापूंगा, मापना हुआ तो बड़ा पहले छोटा सैंपल भगवान दिखाए, छोटा बड़ा नापना हो तो बड़ा पांव दिखाए, छोटा बोले नहीं इसी पैरों से नापूंगा, सैंपल बहुत छोटा था, छोटा छोटा पांव, अब मापना हुआ तो बड़ा रूप बना लिए। से बनिए लोग क्या करते हैं, अनाज लेने के लिए जो बटखरा रखते हैं वो ज्यादा रहता है, पहले पत्थर का बटखरा बनिए लोग रखते थे गांव में, अब तो लोहे का आ गया ना, तो दो बटखरा हमारे गांव में बनिए थे, दो प्रकार के बटखरा पत्थर का रखे थे, गाला खरीदना होता था तो थोड़ा ज्यादा वजन उसका था, आधा केजी ज्यादा था, और देना होता था तो थोड़ा कम वाला से, तो लोग जान गए थे ए, तो हटो वो वाला बटखरा लाओ। तो भगवान दिखाने के लिए छोटा बटखरा दिखाए, छोटा वाट, वाट बोलते हैं ना, 1 kg का वाट है, 2 kg, और लेना हुआ तो बड़ा वाट से मापने लगे, सब माप लिए, अंत में कहे कि तुम झूठ के बोला, बड़ा त्रिलोकी हैं, आप त्रिलोकी हो, महाराज कहते हैं भगवान त्रिलोकी के सामने वो त्रिलोकी बन गए थे बलि, उनको भी थोड़ा ये हो गया था कि मैं बहुत बड़ा राजा हूँ, भगवान इतना शेखी बघार रहा था कहाँ है तीसरा पग के लिए, भगवान कहे कि इस पर बलि महाराज के यहाँ रख दीजिए, आप गीता में कहे ना कि क्षेत्रमिति विधीयते, शरीर भी एक क्षेत्र है, और नीति में कहा गया कि महाराज कहते हैं कि धन से 10 गुना शरीर का कीमत होता है, आपके पास 1 करोड़ संपत्ति है तो 10 करोड़ शरीर का कीमत है, तो हमारे शरीर का भी कीमत है, तीसरा यहाँ रख दीजिए, इस तरह से बलि महाराज सब कुछ देख करके भगवान के कृपा को प्राप्त किए, उनके चरणाम्बुज को मस्तक पर धारण किए और उस साम्राज्य को लेकर के भगवान अपने भाई को दे दिए और उनको सूतल लोक का साम्राज्य दे दिए, इस तरह से भगवान दोनों भक्तों को खुश कर दिए, बलि को भी बुरा नहीं लगा, उनको भी कृपा प्रदान किए, अदिति को भी खुश कर दिए, और जीव गोस्वामी का आप लोग सुन लीजिएगा, समय समाप्त हो गया है, हरे कृष्णा, धन्यवाद, श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की।